एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता हैं आप, ज्ञान सरोवर बेटर वर्ल्ड एकेडमी की और यूरोप स्थित मोरिंगन रिट्रीट सेंटर की निदेशिका हैं। आपका लौकिक जन्म भारत का हृदय दिल्ली के अंतर्गत 1942 में हुआ। आप बचपन से ही समाज सेवा के कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। आपने भारत देश की समस्त धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसी दौरान मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में आप कुछ समय के लिए गर्ल्स स्कूल की प्रधान अध्यापिका के रूप में अध्यापन कार्य कराने लगी। ऐसी मेधावी छात्रा आप अध्ययन काल में रही। 1957 में आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आए। आपने महसूस किया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानवता की आध्यात्मिक सेवा करना ही सच्ची सेवा है। आप एक प्रतिभाशाली वक्ता हैं। फलस्वरूप आपने समग्र भारत का परिभ्रमण करते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने का गौरव प्राप्त किया। आपने 75 से भी अधिक देशों में अपनी अलौकिक यात्रा कर आध्यात्म के कई गुह्य रहस्यों को निरंतर व्याख्यान श्रृंखला देकर अपनी उपयोगिता को प्रतिपादित किया। 1974 में भारत के बाहर विदेश सेवाओं में आपने पहला सेवा केंद्र लंदन में खोलने का श्रेय प्राप्त किया। राजयोग मेडिटेशन और मस्तिष्क की रचनात्मक योग्यताओं के संबंध में अनगिनत प्रतिभाशाली व्याख्यान आप दे चुके हैं। विशेषकर मस्तिष्क की आंतरिक कार्यप्रणाली को रुचिकर ढंग से स्पष्ट करने में आप पारंगत हैं। आदरणीय दीदी के प्रवचन नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारीज के पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं, जिनमें मुख्य हैं सकारात्मक सोच, तनाव मुक्त जीवन शैली, जीवन मूल्य और आंतरिक शक्ति की खोज जैसे विषयों पर अपने प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, ओजस्वी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। मैं आदरणीय सुदेश दीदी जी को देखती हूँ, अनुभव करती हूँ कि आप में वर्ड ऑफ विजडम, मोस्ट स्टेबल माइंड एंड गॉड कंपेनियन विश्व विख्यात परम श्रद्धे दादी जानकी जी की प्रतिमूर्त नजर आती है आदरणीय दीदी में। कहना चाहूंगी जर्रा जर्रा आपके त्याग की गवाही है, इसलिए है तो आप यहाँ आई हैं। यूं ही नहीं दीदी, आप आशा की किरण कहलाती। आप तो इस धरा पर परमात्मा की परछाई हैं, परमात्मा की परछाई हैं। मैं आदरणीय राजयोगिनी परम श्रद्धे दीदी सुदेश जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज का इस मौन भट्टी का विषय समय प्रमाण पुरुषार्थ की विधि, हम ब्रह्मावत्सों की अनुज भाई बहनों की क्या हो, उस पर आपका गहन आत्मचिंतन और आत्मनुबोधन हम सबको प्राप्त हो। आदरणीय दीदी, हम पुनः एक हाथ की ताली से अपनी बुद्धि की झोली फैलाकर दीदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। आप सबको प्यारे मधुबन में बाबा की भूमि पर विशेष आने का, भट्टी करने का सौभाग्य मिला है, इसलिए पहले पहले तो आप सबको बधाई देती हूँ आपके भाग्य की। आपका दिल से निकलता होगा, वाह मेरा भाग्य, वाह हमारा भाग्य कि भगवान की अवतरण भूमि पर आपकी भट्टी का आपको चांस मिला, बहुत अच्छा है। जब हम कहते हैं भट्टी और क्या पुरुषार्थ करना है, तो पहली बात है भट्टी है क्या, भट्टी का मतलब क्या है। भट्टी कहते हैं भट्टी का मतलब ही है और सब तरफ से दरवाजे बंद, कहां से बाहर की हवा ना लगे, कोई खिड़की दरवाजा खुला हुआ ना रहे, कोई भी चीज आप पका रहे हो, आपका ओवन भी भट्टी है, बेक कर रहे हो ना पका रहे हो, और वो उसका दरवाजा खुला रहे और फिर आप केक बेक करो या कोई और चीज अंदर पकाओ, पकेगी, पक जाएगी ना, पकेगी नहीं पकेगी। ओवन में जब सब तरफ से बंद हो, द्वार बंद हो, लीकेज कहीं नहीं हो, तो ऐसे ही बेहद की वैराग वृत्ति, त्याग की भावना, अंतर्मुखी स्थिति भट्टी का पहला पुरुषार्थ है। भट्टी क्या है? भट्टी कोई चार दिन की भट्टी की बात नहीं है, ये तो कल एक कोई चीज को कंसंट्रेट करने के लिए इंटेंस पुरुषार्थ कर सके, फोकस एक जगह पर हो, इसलिए भट्टी कहते हैं। परंतु वास्तव में ये भगवान ने जो यज्ञ रचा है, ये रुद्र अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, यज्ञ का मतलब ही है शुद्धि। यज्ञ रचा है रुद्र ज्ञान यज्ञ सृष्टि की शुद्धि के लिए, और पुरानी का जो भी पुरानी दुनिया है वो समाप्त हो गए और नई दुनिया की स्थापना हो, पर उसका पहला कदम है स्वच्छता। ब्रह्मा कुमारियां सफेद कपड़ों से, स्वच्छ कपड़ों से ही पहचानी जाती है, ये ब्रह्मा कुमारी है। सफेद ड्रेस बाबा ने जो सिलवाई बनाई, ये स्वच्छता का प्रतीक है, सिंप्लिसिटी का प्रतीक है। तो सिर्फ बाहर के कपड़े की बात नहीं है, ये शरीर कपड़ा है। पहला लेसन यही है, ये शरीर एक कपड़ा है। गीता में भगवान के महावाक्य हैं, आत्मा एक शरीर अथवा काया जब आत्मिक स्थिति में है तो ऐसे ही छोड़ देती है, जैसे कि पुराना कपड़े से डिसइंटरेस्ट आता है, पुराना कपड़ा लेट गो करते हैं। नया कपड़ा मिल रहा हो और फिर भी कोई पुराना पहने रहे, फटा हुआ पड़ा रहे, मैला पड़ा हुआ हो, अच्छा लगेगा? तो भगवान पहली तो स्वच्छता सिखाते हैं, इसलिए जो भी कोई विजिटर्स आते हैं तो वो सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं यहाँ स्वच्छता कितनी अच्छी है, सफाई कितनी अच्छी है। परंतु सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, ये शरीर भी हमारा नियम मर्यादा अनुसार स्वच्छ चाहिए। परंतु देह भान से न्यारे होने, तो पहली भट्टी है धोबी की भट्टी। कौन सी भट्टी में बैठे हो? धोबी की भट्टी में बैठे हो। बाबा आए हुए हैं हमारी कर्म इंद्रियों को आज की मुरली के अनुसार शुद्ध और शीतल बनाने के लिए, और कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां शरीर की प्रॉपर्टी है। कर्म शरीर के द्वारा ही करना, हमारे कर्म में स्वच्छता हो, कर्म में शुद्धि हो, बाबा की याद हो। कर्म योगी बनाया है बाबा ने आके, तो वर्तमान समय की बात नहीं है एक्चुअली, ये तो जब से हम ज्ञान में आए, यज्ञ शुरू इसीलिए हुआ है कि संसार के जो अस्वच्छ बन गया, गंदा बन गया, सुंदर से श्याम बन गया, पावन से पतित बन गया, उसको बाबा फिर से आकर के स्वच्छ और शुद्ध बनाते हैं। तो धोबी की भट्टी का मतलब हमारा मन भी स्वच्छ हो, बुद्धि भी क्लीन और क्लियर हो, और कर्म भी शुभ भावना वाला, निस्वार्थ, विश्व कल्याणकारी हो। कर्म इंद्रियां के साथ साथ हमारी ज्ञान इंद्रियों में भी इतनी दिव्यता, शुद्धि, पवित्रता रहे जो हमारी दृष्टि में न स्वयं के अंदर देह का भान रहे, न दूसरे की देह को देख करके आकर्षण अथवा नफरत या विरोध या क्रोध, क्योंकि देह के भान से ही, देह भान का दरवाजा ही है जिससे कि अंदर अस्वच्छता आती है। ज्ञान इंद्रियों से स्वच्छता भी आती है और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी अस्वच्छता अंदर आती है। ज्ञान इंद्रियां इस कमरे की कहें अथवा इस मकान की कहें अथवा इस आत्मा के शरीर की कहें, तो आंखों से हम देखते हैं तो किस दृष्टि से देख रहे हैं? ज्ञान इंद्रियां माना मालूम है ना, ज्ञान इंद्रिय किसको कहा जाता है? पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां। जब ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया रूपी रथ के हम राजा है, ज्ञान इंद्रियां कानों से कुछ सुना, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, बुद्धि ने कान से सुना, सोच चला, बुद्धि ने आंख से कुछ देखा, समझ आया क्या चीज है, परख आई, ज्ञान हुआ, कुछ खाया, नमक की चीज खाई या मीठी चीज खाई, खट्टी है कि मीठी है, ज्ञान अंदाजा आप कहेंगे मैंने टेस्ट कर लिया है, टेस्ट किया है खट्टा है, मैंने टेस्ट किया है भोग। भूल से भी अगर चीनी के बदले नमक पड़ गया, बनाया तो हलवा था, परंतु कभी ऐसा होता भी है कि नमक चाय में भी चीनी के बदले अगर बदले नमक डाल देते हैं तो आंखों ने नहीं बताया कि ये रॉन्ग है, जबान ने टेस्ट ने बताया कि अरे ये तो खारा है खट्टा है। तो ये ज्ञान इंद्री मतलब इससे समझ आई कि ऐसे ही नाक से कुछ सूंघा, बदबू या सुगंध को कहेंगे खुशबू बहुत अच्छी है, खुशबू की फोटो तो नहीं निकाल सकते, फूल की तो फोटो निकाल लेंगे, सच्चा है कि प्लास्टिक का है, टच करके बता देंगे उसका फोटो निकल सकता है, टच कर सकते हैं, सुगंध को टच कर सकते हैं क्या? सुगंध आपको टच कर रही है, हवा को टच कर सकते हो, भाई बहुत ठंड लग रही है, बड़ी गर्मी कहाँ लग रही है, आपकी त्वचा ने बताया, स्किन ने बताया, टच ने बताया, भाई आज बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, आज बहुत ठंड है, हवा में ठंड समाई है। तो ये ज्ञान इंद्रियां इनके द्वारा हमको पांच तत्वों का भी अनुभव होता है और इन ज्ञान इंद्रियों द्वारा ही हम ज्ञान को ठीक रीति से ध्यान से बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। बाबा के मधुर महावाक्यों का गीत गाते हैं, बोलते हैं, मुरली सुनते हैं तो ज्ञान बढ़ता जाता है। कोर्स किया, कानों से सुना ना ज्ञान जो गया कान के थ्रू गया, तो ऐसे ही। परंतु ये हमारे ऑर्गन्स, कुछ पूछा होगा कि ट्रांसलेशन मिल रही है, यही पूछा ना, ठीक मिल रही है, स्पीड ठीक है या बहुत फास्ट है, ट्रांसलेशन वाले से पूछो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि धोबी की भट्टी में का मतलब यही है कि हमारा पहला जो है, जो भी हमारे पास हम अंदर लेते हैं दृष्टि द्वारा, सुनते हैं कानों द्वारा, खाते और बोलते हैं मुख द्वारा, अनुभव करते हैं त्वचा द्वारा, तो जितनी जितनी हमारी ये स्वच्छता शुद्धि सोल कॉन्शियस में हम होंगे, तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी वाणी, उसमें मधुरता होगी, सम्मान स्नेह होगा एक दो के प्रति। तो चेक करने का है, आज भी बाबा ने कहा कि अगर कोई कड़वे बोल बोल रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो अगर आपकी भावना उस आत्मा के लिए शुभ भावना है तो कान से सुनते भी नहीं सुनने, सुनी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, वो गंदगी अथवा कड़वाहट कड़वे शब्द अंदर नहीं रखे, नहीं तो उनके मुख का कड़वाहट हमारे मन में कड़वाहट पैदा कर देगी, उसका असर हमारे पर पड़ेगा। तो बाबा हमको पहली बात ये कि अपने आप को जब समझो मैं आत्मा हूँ और शांति से रहना चाहते हो, शांति चाहिए, सब चाहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, परंतु शांत तब होंगे जब शुद्धि है अंदर, नहीं तो कुछ भी बात अपसेट कर देंगे, सुनेंगे अपसेट हो जाएंगे, कुछ देखा पसंद नहीं आया रिएक्ट करेंगे, वाणी में थोड़ा करेक्शन, क्रिटिसिज्म, कमेंट ऐसा किया इसने, तो वाणी से भी फिर कड़वे शब्द अथवा क्रिटिसिज्म के शब्द निकलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम पहले पहले हमारा योग ठीक लगे, भगवान के संग का रंग हमको लगे, जैसे दूसरों के वाणी का असर पड़ता है, व्यवहार का असर पड़ता है, उनके विचार और वातावरण का असर हमारे पर पड़ता है, तो परमात्मा को हमारे को अगर अपने रंग में रंगना है तो पहले धोबी की भट्टी में बिठाते हैं। बाबा के सत के संग से ईश्वरीय रंग लगता है, तो रंग रेज जब कपड़ा रंगता है तो मैले कपड़े पर अगर रंग चढ़ाएगा सुंदर लगेगा, मैले कपड़े पर रंग तो चढ़ जाएगा, लाल हो पीला हो काला हो रंग चढ़ेगा, परंतु क्या कमी दिखाई पड़ेगी, रंग चढ़ा हुआ भी है मैला कपड़ा अगर रंग का हुआ तो उसकी नोटिस कैसे करेंगे, कैसे पता चला बराबर? कलर तो दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ेगा उसमें? धब्बे दिखाई पड़ेंगे, दाग दिखाई पड़ेंगे। मैला है कपड़ा, धुलाई करके आपने रंग रंग किया तो चमक रहेगी, धुलाई नहीं किया हुआ है, मैला है तो जहां जहां मैल चढ़ी हुई है वहां रंग तो लगा पर धब्बे के साथ लगा। तो चलते फिरते उठते बैठते ये ब्राह्मण जीवन है ही हमारी रूहानी भट्टी। तो पहले हम धोबी की भट्टी में बैठते हैं, हमारा खान पान शुद्ध, हमारा बोल स्नेह संपन्न, हमको कोई भी बात व्यर्थ सुनना नहीं है, व्यर्थ बोलना नहीं है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कल्याणकारी बोलो। ये तो आते ही पहले स्लोगन जगह जगह लिखे हुए भी हैं और बाबा के महावाक्य भी कई बार आते हैं। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ का मतलब कुछ और नहीं, पुरुष माना आत्मा, और ये शरीर रथ है हमारा। आत्मा के प्रति, शरीर में जब मैं आत्मा हूँ तो मुझे हर चीज आत्मिक कल्याण के लिए करनी है, आत्म शुद्धि के लिए करनी है। तो इसीलिए जब स्वच्छ है, बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, तो बाबा के साथ योग लगाना मुश्किल नहीं है। वो योग संग है फिर, जिसका रंग लगता है। योग माना बाबा के साथ संग का रंग। वो रंग तभी चढ़ेगा जब पहले स्वच्छता आएगी। तो इसीलिए पहला मंत्र ही है, चलते फिरते उठते बैठते ये ध्यान रहे, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये पुराना, ये कोई नवा पुरुषार्थ नहीं है, पर पहला पुरुषार्थ यही है, पहला कदम ही यही है। आत्मा के लिए शुद्धि और शांति, ये नहीं कि मैं मर जाऊं तो पीछे लोग कहे मेरी आत्मा को शांति दो, उनकी शांति के लिए भोग लगाओ, पर मैं अपने आप को भोग लगाऊं तो मन शांत रहे, ऐसा भोजन मन में खाऊं जो शुद्ध संकल्पों का भोजन होवे। तो संकल्प की शक्ति को शुद्ध बनाना, केवल कर्म इंद्रियों की बात नहीं, शरीर द्वारा हम भट्टी में बैठे हैं तो समझ कानों को नहीं है, समझ एक्चुअली जबान को भी नहीं है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमारे मन पर असर पड़ता है, हमारी बुद्धि पर असर पड़ता है, हमारे कर्म पर असर पड़ता है। तो दोनों चीजें चाहिए। तो इसीलिए पहले सुना धोबी की भट्टी में चलते फिरते उठते बैठते एक है स्वच्छता, और फिर कर्म करते भी योग युक्त रहे। संग हमारा तो योग, बुद्धि का योग है ना, मन के संकल्प के लिए मन मना भव का मंत्र है, क्योंकि जो सच्चाई है श्रेष्ठता है वो सदा वो ही रहेगी। शब्द बाबा अलग अलग यूज करते हैं, भाई मन मना भव का मंत्र, मन को मेरे में लगाओ। मन की शुद्धि सिर्फ कपड़ों की शुद्धि नहीं, योग बुद्धि से लगेगा। तो बुद्धि में ज्ञान क्लियर हो तो योग ठीक लगेगा। बुद्धि में अभी तक भी भटकने की आदत है, शक की नेचर है, वाणी में गॉसिप का रस बैठा हुआ है, तेरी मेरी गपशप में, तो फिर उसमें वो ना मन की शुद्धि, ना हृदय की शुद्धि, ना वाणी की शुद्धि। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी तुम धोबी की भट्टी से रंगरेज की भट्टी में बैठ जाओ। बाबा के संग का रंग, योग का रंग, योग से आत्मा अंदर रंग चढ़ता जाएगा बाबा के गुणों का। इसीलिए कंपनी और कंपेनियन, ये जो बाबा ने कहा, ये रूहानी कंपनी, बाबा की कंपनी, बाबा को कंबाइंड बना के रखो, अकेले नहीं रहो, बाबा के संग में रहो, कंपनी करो। तो कंपनी किसकी? चलते फिरते उठते बैठते जो बाबा के गुण हैं वो मेरे व्यवहार में आए, यही पुरुषार्थ है। खाली गुण और ज्ञान बुद्धि तक है और सोच तक है तो फिर वो टेम्पररी असर होएगा थोड़ी देर, पर संस्कार नहीं बनेगा। तो आत्मा सिर्फ मन बुद्धि तो नहीं है ना, आत्मा तो मन बुद्धि और संस्कार है, और संस्कार ही आगे का कार्य कराता है। संस्कार साथ लेके जाते हैं, तो इसलिए हमारे कर्म में भी सत्यता हो, शुभ भावना वाला हो। अब समझेंगे भाई दूसरे के की तो भावना हमारे लिए अच्छी नहीं है, उस दूसरे की अच्छी नहीं है तो मैं अपनी शुभ कामना से उनको अच्छा करूंगी ना। दूसरे के खराब मन से मेरा मन भी खराब हुआ तो उनका संग का रंग लग गया ना। तो मुझे ये देखना है कि मेरे पर अगर दूसरों का संग का रंग लगता है, इसका मतलब बाबा के साथ उस समय संग नहीं है, मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे नहीं हूँ, रॉन्ग कंपनी में हूँ। तो गुणों की धारणा जैसे बाबा ने कही कि ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, धारणा करने की बात है। तो धारण करना माना रंग चढ़ जाना, धारण करना माना वो उसके रंग में, बाबा के रंग में रंग गए। फिर वो क्या पहले वाला रूप कपड़ा नहीं दिखाई दे रहे, नया रंग ही दिखाई पड़ेगा ना। आपका कपड़ा सफेद था, लाल रंग में रंग गया, तो पहला जो सफेद था या पीला था उसको दूसरे रंग में रंगा, तो जिस रंग में रंगा सबको वही दिखाई पड़ेगा ना। कोई कहते मेरे मन में तो ये नहीं था, मेरी भावना तो ये नहीं थी, पर मेरे मुख से ये शब्द निकल गया, इसका मतलब कि मन कहीं और था। मन मना भव ये मंत्र पक्का रहे तो ऑटोमेटिकली मन में जो बाबा ने दिन भर सुनाया है वो मन में चिंतन चलता रहेगा, मंथन होता रहेगा। मन शांत खाली नहीं, मन मौज में रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगा। बाबा की बातें मन में पक्की आ गई, साक्षियों करके देखने की दृष्टि आ गई। पहले आंखों ने देखा तो पहले असर होता था, अभी कोई चीज देखी तो बाबा का संग का रंग है, बाबा साथ है, तो बाबा को साथी बनाने से साक्षी दृष्टा की शक्ति अपने आप आ जाती है। और बाबा साथी बनता है तो न केवल मेरे गुण परंतु बाबा के गुण मेरी रक्षा करते हैं, यानी दूसरों के गुण का अवगुण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तभी बाबा ने कहा कि कोई अगर गुस्सा करता है ना तो तुम फूल चढ़ा दो। तो बगीचे से फूल तोड़ के लाके चढ़ाएंगे क्या? कौन से फूल? तो मन की जो भावना, फूल की खुशबू उसको मिले, मुस्कराते रहो, हंसेंगे तो और ही दुखी हो जाएगा वो, परंतु मन में शुभ भावना रखो, खुशबू ऐसी होवे वो आपकी, उसने गुस्सा किया, आपकी वृत्ति में मर्सी आ गई, बेचारा परवश है, कामना पूरी नहीं हुई है इसलिए क्रोध कर रहे है, कामेशु क्रोधेशु। तो अगर अशुद्ध कामना भी नहीं पूरी हुई तो भी गुस्सा करेगा, और हमारी शुद्ध कामना पूरी की तो कंट्रोल रखेगा। तो इसीलिए ये समझने की जरूरत है कि मेरा मन और बुद्धि वो बराबर बाबा के संग से उस रंग में रंगी है। बाबा के संग का रंग मतलब बाबा के सारे गुण, खाली ज्ञान नहीं, बाबा सिर्फ ज्ञान का सागर नहीं है, शांति का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, पतित पावन है, पवित्रता का सागर भी है। तो उससे जो हमारी स्टेज है वो स्वच्छ से पहले स्वच्छ बनी, फिर शुद्ध बनी, फिर पवित्र बनी। कपड़ा जो है पर धोया आपने, परंतु आपने छाया में सुखाया तो आपका कपड़ा छाया में सुखाया, सीलन है, बरसात के कपड़े सूखे हुए और धूप चढ़ी हुई और कपड़ा सूखा हो, फर्क दिखाई पड़ता है क्या? वैसे ही है, चाहे चाहे बरसात का कपड़ा सूखा हो, बरसात में सुखाया हो, तीन दिन कमरे में रख के या 15 मिनट धूप में रख के सुखाया, कपड़े की सुगंध ही बदल जाएगी। तो ऐसे ही यानी पुरुषार्थ क्या है कि परमात्म शक्तियों का मेरे न केवल मेरे ऑर्गन्स पर प्रभाव, पर मुझ आत्मा के मन बुद्धि और संस्कार को प्रभावित करे, यानी पावरफुल बनाए। और पावर और कोई चीज में नहीं है, पवित्रता ही पावर है। आत्मा की जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाती है वो दिव्यता बढ़ती जाती है, तो दूसरे के प्रभाव को खत्म करती है। अंधेरा है मानो, अब आपने अंधेरे को मिटाना है तो क्या चाहिए? लाइट चाहिए। लाइट फाइट करती है क्या अंधेरे को खत्म करने के लिए? लाइट फाइट करती है, पर लाइट की शक्ति, लाइट जगते ही अंधेरा खत्म हो गया। आप कमरे में आए, आपने स्विच ऑन किया, लाइट नहीं आई, पंखा ऑन किया, पंखा नहीं चला, तो क्या कहते हैं? पावर कट ऑफ, पावर नहीं है। तो पावर का मतलब न केवल स्वयं को परिवर्तन करना, पावर का मतलब दूसरे को परिवर्तन कर देना। इसलिए परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो मनमना भाव में आत्मा शक्तिशाली बनती है और मेरे अपने पुरानापन, मेरी अपने मन की मैल, मेरे अपने पुराने अवगुण, मेरी पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, वो बदली हुए हैं या कहां ना कहां से वो मेरे में अंतर, उसके लिए फिर चाहिए अंतर्मुखी स्थिति, अंतर्मुखता की भट्टी में बैठे। तो अंतर क्या है कि फोकस जो है, देह से तो कर्म करना है, फोकस आत्मा पर है, पुरुषार्थ आत्मा का है। तो इसलिए बार बार चेक करें कि मेरा मन स्वचिंतन में है या परचिंतन में बिजी है या प्रभु चिंतन में बिजी है, मन कहाँ है। तो सिर्फ ऐसे बैठना चार घंटे भट्टी में वो नहीं, वो चार घंटे तीन घंटे में कितना समय मेरा मन मेरे अपने पुराने विचार और संस्कार में बिजी है या मेरा मन बाबा के ज्ञान धन से, मंथन से बड़े आनंद वाला है। तो जब उसमें सच्चाई शुद्धि भर गई तो वो पावन बन गया। इसीलिए फिर पावन देवताओं की पूजा होती है। पावन देव परमात्मा को पतित माना मैला, गिरा हुआ, मैले को पावन करना है। तो मुझ आत्मा को जितना जितना फिर मन मना भाव अंतर्मुखी होने का अभ्यास होगा तो पुरुषार्थ में व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएगा, पर चिंतन खत्म हो जाएगा, शुभ चिंतन, शुभ भावना भर जाएगी और वाणी में पराई कोई बात किसी ने उल्टी की, खराब बोली है तो आपके वाणी पर, मन पर असर नहीं पड़ा तो रिपीट भी नहीं होगा। मन पर असर पड़ा है तो ऑटोमेटिकली मन बोझ भारी हो गया, वो कहीं ना कहीं आप बोझ को उतारेंगे ना। तो इसीलिए अपने कमियों कमजोरियों को खत्म करने की भट्टी है, पर साथ में जब दैवी गुण और ईश्वरीय शक्ति भर गई तो दूसरों के अवगुण का असर खाली नहीं, असर तो होगा ही नहीं, पर उनकी, उनको भी शक्ति मिलेगी अपने कमी को खत्म करने की। इसलिए बाबा कहते हैं कल्याणकारी भावना रखो, स्व कल्याण सेवा, जिसको बाबा ने कहा सेवा में समय। सेवा का मतलब क्या? दूसरे को सुख देना। सुख देने का मतलब कंफर्ट, सिर्फ फिजिकल नहीं, परंतु जिन बातों ने दूसरे को दुखी किया है के संस्कार विचार व्यवहार कर्म ने दुखी किए। आप फिर जब उनको ज्ञान देते हैं, योग शुभ भावना से कराते हैं, जैसे कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो पब्लिक में बैठते हैं, थोड़ी देर कमेंट्री करते हैं, वो कहते हैं अच्छा शांति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, वातावरण का असर पड़ा। तो हम अपने आप को फिर जितना जितना पवित्र पवित्र बनाते जाएंगे तो हमारे संकल्प की वैल्यू बढ़ेगी, संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे। संकल्प भी बहुत बड़ी शक्ति है। अंदर चेक करें कि मेरे संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं या समर्थ चल रहे हैं, तो ये अंतर्मुखता की भट्टी है। अब अंतर्मुखता की भट्टी यानी यही जो आंखें, बाहर की जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके बदले तीसरे नेत्र से देख रही हूं। मन के बोल संकल्प से बाबा से बात कर रही हूं। कानों में बाबा की मुरली गूंज रही है, वो बार बार बाबा के शब्द याद आ रहे हैं और उसका रस आ रहा है। पर क्या कहते हैं, मैंने सुनी तो है मुरली पर याद नहीं आ रही है, पूछो रिपीट करो कितनी याद रही मुरली के बाद, क्यों नहीं याद रही? क्योंकि उस समय बुद्धि ने, बुद्धि का जो द्वार है, बुद्धि का योग कहीं और था, अथवा बुद्धि ने इतना इंटरेस्ट से और वैल्यू से उसको समझा नहीं। तो बाबा के भाव को समझना, तो हमारी जो खोट है, योग भी लगा, समझ भी आई, तो जो मन के खोटे विचार थे, जैसे मैल उतर गई, पर संस्कारों में खोट है, कमी है, अवगुण भरे हुए हैं, वो निकल गए, तो फिर कहेंगे सुनार की भट्टी। सुनार की भट्टी, सुनार क्या करता है? सुनार खोट निकालने के लिए क्या करता है? ऐसे ही आपके गहने से खोट निकाल देता है। आपके कंगन में खोट पड़ा हुआ है, समझो 24 कैरेट का बदले 22 कैरेट का हो गया, 20 कैरेट का हो गया, तो खोट पड़ गया ना उसमें। अब आप कहो भाई इसका खोट निकाल दो, तो ऐसे ही जादू कर देगा क्या? खोट निकालने के लिए साफ कर देगा क्या? खोट अंदर है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? उसको गलाना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी खत्म करनी पड़ेगी। तो सुनार की भट्टी का मतलब कि मेरी जो पुरानी आइडेंटिटी है, मैं फलाना हूं, मैं और मेरा, इसको मैंने भट्टी में डाला है। तो मेरा संस्कार, ये मेरा संस्कार जो रावण से लिया हुआ संस्कार था, रावण के वर्षे को जाने दिया, बेहद का वैराग वृत्ति। अब वो खोट निकाल रहा है, सच्चा सोना बना रहा है। आपको चिंता होगी या खुशी होगी? खोट निकल रहा तो खुशी होगी ना, मैल से अटैच होंगे कि और ही फ्री हो जाएंगे? हाँ, चमकने वाला सोना बन तो कमी निकलती चली गई। उसका मतलब ये है, बाबा ने कहा आज की मुरली में उनका चेहरा हर्षित रहेगा, मुनिन आज की मुरली सुनी, सुनार की भट्टी में बैठे मानो मेरा खोट निकल गया। संस्कार परिवर्तन, उसमें फिर लगन की अगन चाहिए। पुराने को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कंगन पहना हुआ है तो वो खोट निकाल के दे देगा, हाथ से कंगन उतार के देंगे ना, गले में हार पड़ा हुआ उतार के देंगे ना, वो गला देगा उसको, पर धीमी उसके लिए भी उसको मालूम है कि किस प्रकार की अग्नि चाहिए। तो बहुत प्यार से, लगन से, ध्यान से हम लगन की अगन में इस देह के भान को खत्म करेंगे। इसलिए बार बार है, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। अभी मान ले कि तू तो शुद्ध पवित्र आत्मा है ना, और कर्म इंद्रियों को शुद्ध करना है तो मतलब शरीर भी पवित्र है तो देवता बनेंगे, देंगे ना दूसरों को वो गुण, खाली अपने तक नहीं रखेंगे। अभिमान से अपने पास कोई चीज को, कोई मनुष्य आत्मा है, किसी के पास कोई अच्छी चीज होती है उनका सीक्रेट रखते अपनी, हमारी अच्छी कमाई होगी अगर हम सीक्रेट रखेंगे, वो सीक्रेट रखने के लिए भाषा, इतनी सारी भाषाएं क्यों हुई, क्योंकि हमारी बात, हमारी कंट्री का सीक्रेट हमारे पास ही रहे। और हम बाबा कहते हैं तुम सेक्रेड हो, तो जो तरीका तुमने अपने लिए अपनाया है और अपने को अगर अच्छा बनाया है तो दूसरा आपसे भी अच्छा बने। बेहद की भावना में परिवर्तन होए तो उसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं आवे। कोई हमारे से आगे बढ़ा, उसकी महिमा हुई, और मेरे मन में आया ये तो पीछे आया हुआ है मेरे से, और इनको बड़ा समझ रहे हैं, मुझे छोटा समझ रहे हैं, इनकी बात को मान रहे हैं मेरी नहीं मान रहे। तो अपने अहम भाव से जो वहम पैदा हो रहा है दूसरे में, रहम नहीं आ रहा है उस कमी कमजोरी वाले पर वहम और अहम। तो सच्चा सोना बनना है तो मैं और मेरा, मेरा अहम और दूसरे पर वहम, विश्वास कम होना और अपने दिव्य गुणों पर और निश्चय बुद्धि हो करके रूहानी नशे में रहना, उससे पता चलता है। जैसे बाबा ने कहा, जब बाबा को निश्चय हो गया कि मैं ये बनने वाला हूँ, तो क्या करेंगे इन कौड़ियों को, वो जो अपनी संपत्ति थी, अपनी नहीं, चलो ईश्वरीय सेवा में दी और ट्रस्टी को, पार्टनर को उसका हिस्सा दे दिया, ये नहीं कहा कि मैं उसे थोड़ा और ले लूं, रखूं। तो मतलब क्या है कि हमारे भट्टी, सुनार की भट्टी में बैठते, बाबा ज्वेलर ने आके भट्टी बनाई है, तो रतन से हीरा बनाने आया, वैल्यू को बढ़ाने आया है। हमारे में जब अवगुणों की खाद पड़ गई तो वैल्यू कम हो गई और चमक भी कम हो गई, यानी खुशी भी कम हो गई। खुशी होती है तो चेहरा चमकता है, और अगर थोड़ा चिंता होती है, किसके प्रति नफरत होती है, मन में ईर्ष्या होती है, चेहरा चमक रहा होता है। तो बाबा कहते हैं, यानी अपने आप से देखो कि मैं सचमुच सुनार की भट्टी में बैठी हूँ। गुण बाबा ने मेरे जीवन को कौड़ी से हीरा बनाया है, लोहे से सोना बनाया है, पारसनाथ के पास बैठी हूँ। तो अपने आप की यानी भट्टी में अंतर्मुखी होकर के अपनी चेकिंग और चेंज परिवर्तन, एक ही शब्द में कहेंगे भट्टी माना परिवर्तन, कच्चे से पक्का हो जाना। कच्चे रहे तो दूसरे पर असर होगा। अब मिट्टी का बर्तन भी है, अगर मिसाल के तौर पर ये मिट्टी है ना, कोई शरीर छोड़ता है तो डस्ट टू डस्ट मिट्टी है। अब मिट्टी अगर मिट्टी के प्याले में आप पानी पियो, हेल्दी बनेंगे। उसी मिट्टी के प्याले को कप बना, कसोरा बनाया, पॉलिश किया, कप बन गया। और मिट्टी में तो जो भी चीज डालेंगे उसका असर पर मिक्स हो जाएगा। तो अगर मैं मिट्टी के भवन में हूँ, जिसको बाबा का तुम्हारा पैर मिट्टी पर न लगे, और पैर चलेंगे तो जरूर है ना, धरती पर लगेगा ना। पर ये हमारा बुद्धि का पैर मिट्टी पर न पड़े। श्रीमत की पालना करते इस मिट्टी को ये परिवर्तन करना, तो वो अगर हमने पकाया नहीं भट्टी में, भट्टे में नहीं डाला, तो उस पर जल्दी असर चेक कैसे हो। तो इसीलिए जैसे ईंट पकाने वाला भट्टा भट्टी होती है, तो अपने आप को ये पर्सनल भट्टी, अपने आप को मजबूत बनाना है, कच्चे से पक्का बनाना है, किसी चीज का असर मेरे पर ना पड़े। कच्चा वो है कप बनाया, हाथ रखा तो उसकी शक्ल ही बदल जाएगी, असर पड़ जाएगा। पक गया यानी भट्टी में वो शेप बन गई, तो उसकी मिट्टी का असर कम होगा, परंतु फिर भी थोड़ा पुराना मिट्टी का टेस्ट आएगा। पर आपने अगर पॉलिश कर दिया उस कप को, कप कुछ अब्सॉर्ब नहीं करेगा, उस जो मिट्टी का कसोरा है वो जो भी आपने डाला ना वो पी जाएगा, बीच में कप पिएगा नहीं। अमृत डाला तो भी अलग है, पानी डाला तो भी अलग है, दूध डाला तो भी अलग है, वो ट्रस्टियों के रहा। मेरा पानी है कप में आया तो मेरा पानी हो गया। तो जितनी जितनी ये भट्टी में हम पक्के होते जाएंगे, योग में पॉलिश होते जाएंगे, उतना उतना चमक बढ़ती जाएगी, उतना उतना न्यारापन आता जाएगा। मेरापन खत्म होगा, वैराग वृत्ति आती जाएगी। अब घर चलना है ये मंत्र याद रहेगा, घर चलना है तो देह को तो लेके ही नहीं जाने, स्वर्ग में चलना है तो रावण की प्रॉपर्टी इमिग्रेशन से पास नहीं होने देगी, क्योंकि सतयुग में कोई अवगुण तो होता ही नहीं, सतयुग में कोई अवगुण नहीं, सर्वगुण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो जितने जितने अपने आप को हम इस मिट्टी के भान से चलते फिरते उठते बैठते न्यारे होते जाएंगे, पुराने विचार व्यवहार को बदलते जाएंगे, तो फिर दूसरे का असर हमारे पर नहीं पड़ेगा, पक्के हो जाएंगे। पॉलिश किया हुआ कप आपने पिया, उसमें जो चीज डालिए उसका ही टेस्ट आएगा। तो हमको बाबा वो दिव्य गुणों की पॉलिश कर रहे हैं। रोज एवरी डे धारणा, जितनी जितनी धारणा होती जाएगी धन बढ़ता चला जाएगा, आत्मा में शक्ति बढ़ती चली जाएगी, ट्रस्टी होकर के रहेंगे। तो भट्टी का मतलब है ग्रस्तीपन से निकल करके ट्रस्टी हो जाना, चमकने वाला, पॉलिश पूरा हो गया। तो इसीलिए प्रभाव से परे, प्रभाव का अगर अभाव पड़ा तो नया कर्म बन जाएगा। तो अब समय है पिछले कर्मों को खत्म करने का, कर्मों के हिसाब किताब को खत्म करने का, नए कर्म नहीं बनाने हैं। समय अनुसार कर्मातीत बनना है, कर्मातीत, पिछले कर्म पास्ट के कर्म से भी फ्री और दूसरे के कर्म के प्रभाव से भी परे, वे कर्म भी खत्म और दूसरे के कर्म का असर भी खत्म, अपने भी कर्म भी भस्म और दूसरे ने कोई विकारी कर्म किया, मानो गुस्सा किया, अपमान किया, निंदा की, तो मेरी स्थिति न्यारी है। तो वो अंतर्मुखता की भट्टी चलते फिरते उठते बैठते करने से बाकी सब भट्टियों में टर्न बाय टर्न सफाई भी होती जाएगी, शुद्धि भी होती जाएगी, स्वच्छता भी बढ़ती जाएगी, चमक भी बढ़ती चली जाएगी, सेवा भी स्वतः ही होगी। परंतु फिर क्या है, बाहर की खाली बात नहीं, अंदर की सच्चाई, मन के अंदर मन मना भाव से अंदर की शुद्धि स्वच्छता, फिर से बार बार चेकिंग रहे तो फिर दिल में कोई दुख नहीं रहेगा। प्यार से ऐसा ही महसूस होगा, बाबा के दिल तक तो नशीन हूं, बाबा को जो पसंद है मुझे वो ही करना है। जो बाबा ने श्री मत दी है उस अनुसार ही चलना है। तो ये अपनी चेकिंग, भट्टी का मतलब है अपनी चेकिंग, अपनी चेंज और अपने लक्ष्य को पक्का रखना। चेकिंग होवे, चेंज में दृढ़ता होवे, विल पावर होवे, और कोई भी किसी भी प्रकार की कमजोरी का हमारे पर असर ना पड़े, दूसरे की कमी का इफेक्ट नहीं, इफेक्ट डिफेक्ट कर देता है। किसी भी चीज का प्रभाव आपको पड़ा, मानो कपड़ा साफ है, मिट्टी लग गई तो उसका इफेक्ट का डिफेक्ट आ गया था। तो किसी के शब्दों से हमारे मन में दुख ले लिया तो सुख की सीमा, सुख जो है उस पर असर, खुशी का असर, खुशी खत्म हुई, इसका मतलब कमजोर आत्मा होना। सत्यता को पकड़ के रखा, आत्मा के असली स्वरूप को बार 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 यूज करते रहे तो सत्यता से प्रसन्नता भी आती है, निर्भयता भी आती है, सभ्यता भी आती है और आत्मा के अंदर खुशी के बदले आनंद रहता है। अतीन्द्र सुख के झूले में झूलेंगे। तो ऐसी भट्टी करें जिसमें सदा ही हमारी जो सत्य स्वरूप है उसी स्वरूप में हम स्थित रहे। तो आत्मा का असली स्वरूप तो पवित्रता और शांति, पर वो उसका आधार परमात्मा से प्रेम। फिर है प्रेम, जितना जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे, भगत तो बहुत याद करते हैं, भगत ज्यादा याद करते हैं, दुख में याद करते हैं, और दुख के याद में परमात्मा के प्यार का अनुभव नहीं होता, क्योंकि दुख में जो आत्मा से परमात्मा से शक्ति लेने की शक्ति चाहिए वो नहीं होगी। इसलिए पहले तो बाबा कहते हैं दिन रात या अपनी बुद्धि में निश्चय और नशा रखो। जो कोई नवा पुरुषार्थ नहीं है, जो बीच बीच में पुरुषार्थ में पॉइंट्स मिलती हैं, वो फिर भूल जाती हैं, उनको फिर वापस लाना है। मुरली तो वही है, रोज मुरली नवी पढ़ते वही है पर नवी लगती है। तो जो उस बाबा ने 80 साल पहले सुनाया आज भी वही सुन रहे हैं। तो नवी कोई बात बाबा नहीं सुनाते, कल अब पहले जो सुनाया अब भी वही सुना रहे हैं, 5000 साल के बाद सुनाया। पर जो बाबा तरीका बता रहे हैं उसको कैसे यूज करो, हमारा ही सौभाग्य है, हम सुन रहे हैं भगवान के महावाक्य। कोई भी भगवान से डायरेक्ट सुने, बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे भगवान के बोल उसके कानों में पड़े, और तो भाग्यवान आत्मा अपने भाग्य की महिमा। तो क्या होगा कि अपनी शुद्धि भी होती चली जाएगी, खुशी भी बढ़ती चली जाएगी, प्रभु चिंतन भी बढ़ेगा और प्रभु की महिमा हृदय से निकलेगी। तो सेवा तो अपने आप मनसा से किया, तो मन वाणी से पर निकला मनसा से। मनसा सेवा करो, मनसा सेवा करो, तो ऐसे बैठ के थोड़ी मैं सकाश दे रही हूँ, मैं किरणें फैला रही हूँ, मैं शांति के वाइब्रेशन दे रही हूँ, तोता बन के पैरट बन करके नहीं दे रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं तो अनुभव करा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं तो उसका रूप बनते जाते हैं। तो तब कहेंगे भट्टी में से पक्के निकले, कच्चे नहीं निकल आए। कोई कोई ईंट बाबा ने कहा कच्ची रह जाती है, वैसे बाबा ने कहा पक्का बनने का मतलब यह है अच्छी तरह से पक गई कोई भी चीज डिटैच हो जाएगी। हलवा पक गया भाई, अम्मा मरे हलवा खाओ, बीबी मरे हलवा खाओ, तो क्या सचमुच हलवा बना के खाएंगे क्या? सचमुच हलवा बना के भोग लगाया तो बस पूरा हो गया, ये नहीं है। हलवे का मतलब ये है डिटैच, पक गया, कढ़ाई छोड़ देगा, पतीला छोड़ देगा, बर्तन में चिपकेगा नहीं। तो कोई बात अगर मेरे को चिपक गई और या मेरी बात किसी पर चिपकी है तो कच्चा हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में यादगार है निर्लेप, लेप नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता। तो आत्मा पर हर चीज का असर देह अभिमान के कारण पड़ता है, और जब देह से न्यारी हूँ और पॉलिश हो गई हूँ तो असर नहीं पड़ेगा। धुलाई करेंगे फट से धुलाई हो जाएगी। इसलिए अपने को पावरफुल बनाना है, भट्टी माना पावरफुल अग्नि, कॉन्स्टेंट अग्नि। फिर भट्टी सबकी इकट्ठी क्यों करते हैं, अकेला कर, इसका महत्व क्या है, भट्टी नाम क्यों पड़ा? एक लकड़ी जलाएंगे भट्टी नहीं कहलाएगी, आग तो जल रही है पर वो भट्टी नहीं कहलाती। आग तो जल रही है पर भट्टी नहीं कहलाती, उसमें और लकड़ी पड़ी, तीसरी लकड़ी चौथी लकड़ी पकड़ी है, तो पर आग पक्की पूरी है तो कच्ची गिली लकड़ी भी अगर उसमें डालेंगे वो भी सूख जाएगी और उसको भी आग लगेगी, इसलिए संगठन चाहिए, समझा। यानी आप अपने आप को, आपकी लगन की अगन का प्रभाव दूसरे पर भी पड़े, तो गिल्ली लकड़ी भी भट्टी में बदल के राख हो गई। तो हमारा कोई कच्चा संस्कार भी है ना, वो संगठन के बल से, संघ के बल से, वातावरण के बल से, बाबा के शक्तियों से, ज्ञान का संगठन इकट्ठा सुनते हुए वो सब बल मिलता है, इसलिए भट्टी का महत्व है। तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको भट्टी में आने का चांस मिल। ओम शर।
ओम शांति। परम पवित्र मास्टर प्योरिटी के वेव्स देने वाली दीदी ने हमें धोबी की भट्टी से, रंगरेस की भट्टी, सोनार की भट्टी और उससे भी आगे पारस नाथ की पारस मणि बनाने के लिए हमें बहुत सुंदर युक्तियां और रियलाइजेशन दिया। दीदी ने बहुत सुंदर हमें एक प्याली दी है कि जो देह भान की मिट्टी में आत्मा बैठी हुई है, लेकिन हमारी ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों पर हमारी आत्मा की पॉलिश हो जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दीदी ने हमें संगठन की शक्ति के बल को भरते हुए हमारा ध्यान खिंचवाया कि हमारी गीली लकड़ी रूपी कमी कमजोरी जो होगी वो इस संगठन की शक्ति में स्वतः ही स्वाहा हो जाएगी और हम प्रभु प्रेम के परवाने बनकर जो पिया के साथ है सदा ही ज्ञान बरसात है। दीदी ने हमें हमारी स्मृति दिलाई कि ये भट्टी माना जो हम जानते हैं, जो हम करते हैं, वो कुछ विस्मृति में चला जाता है, उसे पुनः जागृत सशक्त बनाना, मन को प्रकाशवान बनाना ये भट्टी का उद्देश्य है और ये संगठन का बल हमको देता है। दीदी आपने जो ये मार्गदर्शन हमें मन को प्रकाशित और बाबा की श्रीमत को मनसा वाचा कर्मणा में पालन करने के लिए प्रेरणा युक्त आध्यात्मिक उद्बोधन दिया है, हम सभी ब्रह्मावत्स अपना वर्तमान समय पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए अवश्य ध्यान देंगे, ऐसे संकल्प के साथ हम आदरणीय दीदी का एक हाथ की ताली से संकल्पित होकर शुक्रिया करते हैं कि हम इसे अवश्य पालन करेंगे और अपने मन को प्रकाशवान बनाकर अपने ब्राह्मण जीवन को प्याले जैसा आत्मा की पॉलिश कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों पर करके कच्चाइयों से अप्रभावित होकर पक्के बनकर अन्य आत्माओं पर भी उसका प्रकाश, उसका प्रभाव डालेंगे, उन्हें भी आप समान बनाएंगे। दीदी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए यही दिल गा रहा है। लगते सामान्य हैं आप पर बाप समान हैं आप, लगते सामान्य हैं आप पर आप बाप समान हैं। जीता जागता खुशी और प्रसन्नता का उल्लास है आप, जीते जागते खुशी का प्रकाश और उल्लास है आप, कोई अंधेरा ना रोक सके वही ज्ञान सूर्य का पवित्र प्रकाश है। दीदी आप वही ज्ञान सूर्य का पवित्र प्रकाश है आप, जिससे आपने हमें पवित्रता की पावर से हमारी दूर दूर तक की आत्मा के अंधकार को दूर करके प्रकाशित कर दिया है। दीदी जी बहुत बहुत शुक्रिया।